आत्मानुशासन लेक्चर नंबर 11। ओम नमः सिद्धेश्वर, ओम नमः सिद्धेश्वर, ओम नमः सिद्धेश्वर, ओम शुद्धात्मने नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वच्छायाणं, नमो लोये सौवसाऊणं, लक्ष्मी निवास निलयं, विलीन विलयं, निधाय रदिवीरं, आत्मानुशासनमहं वक्षे मोक्षाय भव्यानां। पूज्य श्री गुणभद्र आचार्य देव ने यह आत्मानुशासन नामक ग्रंथ लिखा है और उस पर शुल्लक मनोहर जी वर्णी के जो प्रवचन है उस पुस्तक में से हम आए अभी पृष्ठ संख्या 53 पर, 53 नीचे का पैराग्राफ पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ तो बात ये हुई थी कि सभी जी उत्तम सुख चाहते हैं, तो उत्तम सुख चाहते हैं तो सुख में बाधक तो कर्मों का उदय है, तो समस्त कर्मों का क्षय होने पर ही वो उत्तम सुख प्राप्त हो जाता है। और कर्मों का क्षय सत चारित्र से होता है, यानी आत्मा में ही लीन रहने से कायम। तो कहते उसका जो सम्यक चारित्र के पूर्व सम्यक ज्ञान होना चाहिए, यानी आत्मा का अनुभव होना चाहिए, उसके लिए आगम ज्ञान आवश्यक है। और ये आगम प्रकट होता है श्रुति से, श्रुति भगवान के वचन को कह दिया, भगवान के वचन, उसी को दिव्य ध्वनि भी कहते हैं। यानी वो आप तक के द्वारा ये हमें पूरा उपदेश मिल गया है। उसके बाद उन्होंने 53 पेज पर वेद, श्रुति, स्मृति और पुराण कह के वो सभी बातें बताई थी। तो केवल ज्ञान को यहाँ वेद कहा था, ये जो दिव्य ध्वनि है उसको श्रुति कहा था, गणधरों ने जो द्वादशांग रूप जो रचना की उसको स्मृति कहा था, और वो जो शास्त्र उसमें से रचे गए उसको पुराण कहा। उसमें चार अनुयोग पाए जाते हैं, यहाँ तक तो हमने पढ़ा था। अंतिम पैराग्राफ को पढ़ेंगे 53 पेज पर, पृष्ठ पर, सम्यक ज्ञान में पदार्थ का स्वरूप। सम्यक ज्ञान उसे कहते हैं जो जैसा हो उसे वैसा जानना। सम्यक यानी सही, यथार्थ, जो भी पदार्थ आज सामने है, सम्यक ज्ञान सबका निर्णय वर्तमान पदार्थ में ही कर लेता है। ज्ञान को भूतकाल की अपेक्षा नहीं लेनी है। ये पदार्थ कहाँ से आए, किसने बनाए आदि विकल्पों की ज्ञान में आवश्यकता नहीं है। वर्तमान में जो पदार्थ सामने है उसी पदार्थ में उसके धर्म को जानकर निर्णय कर लो। प्रत्येक पदार्थ त्रिगुणात्मक है, उत्पाद, व्यय, द्रव्य युक्त है। इन्हीं का दूसरा नाम है सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये जो अन्य जो मति मानते हैं ना, उसके उस भाषा में कुछ बता रहे अभी, उनका कहना कुछ अलग है। वो रजो तमो किसको कहते वो बात अलग है, यहाँ वो हाँ उत्पाद व्यय ध्रुव पर ही घटित कर रहे हैं। द्रव्य नाम सत्व का है जिसमें आविर्भाव और तिरोभाव नहीं है। आविर्भाव तिरोभाव यानी पर्याय में जो उत्पन्न होना, व्यय होना, वो जो है उसको आविर्भाव होना यानी प्रकट होना, तिरोभाव होना ढक जाना, नष्ट हो जाना, व्यय होना। उस सत्व के आधार में जो पर्यायों का आविर्भाव होता है उसका नाम उत्पाद है। यानी आधार कोई वहाँ वस्तु होगी तो उसके आधार से पर्याय उत्पन्न होगी, बिना किसी के, बिना द्रव्य के पर्याय ऐसे उत्पन्न नहीं होगी। तो यहाँ कहते हैं जिसके आधार से पर्यायों का जो आविर्भाव होता है तो आविर्भाव होता है उसका नाम है उत्पाद, उसी को कहा रजोगुण। और उत्पन्न हुई वृत्ति का जो अगले क्षण अभाव होता है उसका नाम व्यय है अथवा तमोगुण है। प्रत्येक पदार्थ त्रिगुणात्मक होते हैं, उन्हीं तीन गुणों को देवता के रूप में जाना जाए तो प्रत्येक पदार्थ में द्रव्य का प्रतीक विष्णु, वो कहते ना ब्रह्मा विष्णु महेश, यानी कायम रहने रूप। वो क्या मानते हैं अन्यमति, विष्णु यानी वो सबका रक्षण करता है, ब्रह्मा उत्पन्न करता है और महेश नाश करता है। उत्पाद का प्रतीक ब्रह्म और व्यय का प्रतीक महादेव है, शंकर है, उसी को महेश भी कहते हैं, शंकर भी कहते हैं। ये त्रिदेवतामय समस्त जगत के पदार्थ है, ऐसे कोई देव नहीं हो तो इसको प्रतीक बनाया। क्या बताया यहाँ पर कि वो कहाँ से आया, क्या हुआ, उसको वो उसकी जरूरत नहीं है। तो ज्ञान तो पदार्थ को इस तरह से जान लेता है कि उसमें उत्पाद व्यय ध्रुवता है। पदार्थ की परिणमनशीलता 54 पेज पर आएगी। जो पदार्थ है कह दिया ना, इन्हें सत्ता घटी की पहले सत, यानी जो जो सत रूप वस्तु है वह प्रति समय परिणमता रहता है। रहता है कहने से वो कंटिन्यूटी बताई, खाली परिणमता है ऐसा नहीं कहा, परिणमता रहता है यानी हर समय उसका परिणमन होता रहता है। कोई उसका ख्याल करे तो, न करे तो, किसी की जानकारी में हो तो, न हो तो, क्या कहते, कोई उसे जान रहा हो या नहीं जान रहा हो, किसी को पता भी नहीं वो वस्तु वहां पर है, किसी के ना हम जैसे किसी के, केवल ज्ञानी के ज्ञान में तो सब कुछ है, परंतु फिर भी उसका परिणमन तो उसके अपने में चल ही रहा है कायम। यदि परिणमन करने वाले देवता उसी पदार्थ में स्वभाव में न हो तो अनंतानंत पदार्थ है, वे प्रतिक्षण अपने पर्याय की सृष्टि करते रहते हैं, इसमें बाधा आ जाएगी। यानी प्रत्येक पदार्थ में अपनी नई पर्याय उत्पन्न होती, पुराने का व्यय होता है, कोई दूसरा भगवान नहीं उनका करने वाला, ख्याल में आती है। जैसे घड़ी में चाबी भर दी जाए तो वह निरंतर चलती रहेगी, इसी प्रकार अनंत पदार्थ है जिनमें अनंत सूक्ष्म है, अनंत स्थूल है, वे समस्त पदार्थ प्रतिक्षण स्वनिहित द्रव्यत्व देवता के प्रसाद से, यानी द्रव्यत्व गुण है उसका निरंतर परिणमन करने वाला, उसको देवता कह दिया, परिणमते रहते हैं। ऐसा कोई देव नहीं बैठा है वो अंदर पर पदार्थ में, ये उसका रूपक बना के समझा रहे, तो परिणमते रहते हैं और उनका तिरोभाव भी होता रहता है और वे सदैव सत रहा करते, यानी वस्तु कायम रहते हुए कायम परिणमन करते। पदार्थों की त्रिगुणात्मकता, इसी को त्रिगुण कहते हैं। ये तीनों गुण उत्पाद व्यय द्रव्य प्रत्येक पदार्थ में एक साथ रहते हैं। जैसे एक यह अंगुली है, इसको कुछ झुका दिया तो यह बतलाओ कि अंगुली में कौन सी दशा बनी है, यह अंगुली टेढ़ी हुई है यह दशा बनी है, और कौन सी दशा मिट गई है, यह सीधी थी वह दशा मिट गई, यानी वो सीधी ऐसी अंगुली थी और ऐसी टेढ़ी हो गई, सीधी दशा मिट गई टेढ़ी दशा उत्पन्न हुई। अंगुली तो कायम है, मिट जावे सीधी दशा और हो जावे टेढ़ी दशा, फिर भी क्या यह उंगली नहीं है, तब भी वह उंगली अंगुली थी और अब भी अंगुली है। अच्छा अब यह बदलाव, पहले इस अंगुली की सीध मिटी या टेढ़ बनी, क्या कहते हैं, सीध मिटी या टेढ़ बनी, यानी सीधी दशा और ये टेढ़ी दशा, उसको सीध कहा और ये टेढ़ कहा, यानी पहले क्या हुआ, पहले व्यय हुआ कि पहले उत्पाद हुआ, आप क्या कहते हैं, पहले व्यय हुआ, तो व्यय हुआ तो कहाँ गई वो दशा? टेढ़ी हो गई। तो टेढ़ी हुई और उसी समय ये नहीं रही, ये तो ये यहाँ था तो था, और ऐसी हुई तो पहले व्यय हुआ, अभी अंधकार था रूम में और हमने बटन दबाया तो प्रकाश हुआ, तो पहले अंधकार गया कि पहले प्रकाश आया? नहीं, उनको नक्की करने दो ना। तो अंधेरा गया तब यहाँ क्या रहा? प्रकाश आए बिना अंधेरा कहाँ से गया? यानी बीच में एक समय के लिए खाली हो गया द्रव्य? ऐसा नहीं होता है। समय यही होता है, जो नए पर्याय का उत्पाद है वही पुरानी, ये भी पुरानी पर्याय नहीं रही यही उसका व्यय है। अभी वो टेढ़ापन छोड़ दो, अभी हमारी तीन उंगली है, वो बीच वाली उंगली, ये पहली वाली, ये पहला दूसरा और तीसरा, तो ये पहली है। अब हम दूसरी की बात करेंगे, दूसरे में पहली नहीं है, दूसरे में दूसरी है, तो इसमें इसका नहीं होना इसका व्यय है। यानी अभी पहले समय में ये थी, दूसरे समय में ये आ गई तो ये नहीं रही, तीसरे समय में ये आ गई, तो समय वही है उसका। ख्याल में आएगा? यही पूछ रहे कि अब बतलाओ कि पहले इस अंगुली की सीध मिटी या टेढ़ बनी? न यह बुद्धि में जस्ता है कि इस अंगुली में टेढ़ पहले बनी और सीध पीछे मिटी, और न यह कहा जा सकता है अंगुली की सीध पहले मिटी टेढ़ पीछे बनी। इसके अगले क्षण में जो टेढ़ रूप परिणति हुई है इसी का नाम सीध का विनाश है। नहीं समझे? ये नए का उत्पन्न होना ही पुराने का नाश कहलाता है। ऐसा नहीं वो नाश हुआ और बाद में उत्पन्न हुआ, ऐसा नहीं है। वो नहीं रहने, नया उत्पन्न हुआ, ये तो इट इज नो मोर। नो मोर का अर्थ उसका व्यय हो गया। हर समय नए नए उत्पाद होता रहता है, तो पहले का क्या होता है? इट इज नो मोर, यानी उसका व्यय हुआ। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं कि उसका व्यय हो जाएगा फिर नहीं उत्पन्न, ऐसा नहीं। क्योंकि एक समय में तीनों विद्यमान है, उत्पाद भी उसी समय, व्यय भी उसी समय, ध्रुवता भी उसी समय। जो उत्तर क्षण में परिणत होता है उसी को पूर्व पर्याय का विनाश कहते हैं। कोई पुरुष अपने मेहमान को पहुंचाने जाए स्टेशन तक, वह मेहमान गाड़ी में बैठकर चला गया और वह लौट आया, अब वह बताओ उन दोनों का वियोग कहाँ हुआ? आप कहेंगे कि स्टेशन पर उनका वियोग हुआ। अरे स्टेशन पर तो वे साथ ही था, वियोग हुआ और संयोग का अंत हुआ। इन दोनों का एक ही समय है। ओके, वहीं पर हम हमेशा वहाँ देवलाली में उदाहरण देते हैं। हम यहाँ सब शिविर में आए देवलाली में, कहाँ बिछुड़े हैं? हम कहेंगे देवलाली में भी, अरे देवलाली में तो साथ में थे, बिछुड़े कहाँ हम? ये पद्धति है ना कहने की ऐसी। ये वो पदार्थ में आविर्भाव, तिरोभाव और सत्व का रहना, ये तीनों ही चीजें एक साथ होती है। वस्तु स्वरूप के सम्यक ज्ञान से मोह का प्रक्षय, विशेष क्षय, यानी मोह नष्ट हो जाता है। अब बताओ भैया, जब समस्त पदार्थ अपने आविर्भाव, तिरोभाव और सत्व से संपन्न है, क्या कहें? ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसमें अपना अपना उत्पाद, व्यय और ध्रुवता नहीं है? बोलो, सोच कर बोलो। ऐसे कौन कोई है ऐसा पदार्थ विश्व में? इतने अनंत अनंत जीव है, उससे अनंत गुणे पुद्गल है, धर्म अधर्म सब इतने द्रव्य है, ऐसा एक भी द्रव्य नहीं है कि जो उत्पाद, व्यय, ध्रुवता से रहित हो। तो ये कहते जब समस्त पदार्थ अपने आविर्भाव, तिरोभाव और सत्व से संपन्न है, तो फिर किसी पदार्थ का कोई दूसरा पदार्थ कैसे अधिकारी होगा और किसी का दूसरा कैसे कुछ लग जाएगा? ना उसका कुछ परिणमन कराता है, ना कुछ उसका संबंध है, कुछ नहीं। प्रत्येक पदार्थ स्वतंत्र है, अपने में है और अपना अपना परिणमन करते हैं, कायम रहते हुए अपना परिणमन खुद करते हैं, और वो परिणमन भी उसके अपने कारण होता है। कोई पर का सामने आया निमित्त इसलिए परिणमन कुछ होना था और दूसरा बदल गया, ऐसा कभी नहीं होता। हम आप एक जानदार पुरुष हैं, इसलिए मकान संपदा इत्यादि को गाली दे रहे हैं कि यह मेरा है। ठीक है, पुण्य का उदय है सो उन्हें अपना मान रहे हैं। वे यदि जानदार होते तो वे भी कह देते कि यह पुरुष मेरा है। नहीं समझे क्या कहना चाहते। ये कह रहे कि हम जानने वाले हैं, जीव है तो उसमें ज्ञान है, तो जानने वाला क्या कहता है, ये घर मेरा है, ये धन मेरा है, ये सो ये पुस्तक मेरी है। तो कहते अगर ये घर में और ये पुस्तक में ज्ञान होता तो वो भी कहता कि ये पुरुष मेरा है, ये स्त्री मेरी है ना, तो हम भी उसके हो जाते क्या? ऐसे थोड़ी है ये, तो ये क्योंकि ये तो बेजान चीज है ना, हम कहते ये मेरे, तो वो भी कहते ये मेरा है। जैसे आप कहते ये लड़का मेरा है, वो भी कहते ये माँ मेरी है, वो दोनों जानदार है ना, सयाने है ना ज्यादा। ये हम आत्मानुशासन पढ़ रहे, हाँ आत्मानुशासन अभी 9वां श्लोक है और उस पर सहजानंद जी के प्रवचन है, उसको हम पढ़ रहे हैं। यहाँ तो कह रहे हैं कि वस्तु स्वरूप का सम्यक ज्ञान हो जाता है तब मोह क्षय हो जाता है। यहाँ ये बात हो रही थी कि हम आप एक जानदार पुरुष है, नहीं जानने वाले हम द्रव्य हैं, इसलिए मकान और संपदा इत्यादि को गाली दे रहे कि यह मेरा है। उसको मेरा कहना ही उनके लिए गाली है कह रहे हैं। ठीक है, पुण्य का उदय है सो उन्हें अपना मान रहे हैं। वे यदि जानदार होते तो कौन, मकान और संपदा, उनमें अगर जानने की शक्ति होती तो वे भी कह देते कि यह पुरुष मेरा है। आप कितनी ही कल्पना करें कि मकान मेरा है, संपदा मेरी है, फिर भी न मकान आपका हो सकता है न संपदा आपकी हो सकती है। स्वरूप में अन्याय नहीं है, वस्तु स्वरूप में कोई अन्याय नहीं है, कोई वस्तु किसी की नहीं है। भेद विज्ञान से वासित यह अवबोध, अवबोध यानी ज्ञान, इन आगमों से उत्पन्न होता है। ये बात कहाँ से चली थी, कि तो कर्म का क्षय चारित्र से होता है, चारित्र ज्ञान से होता है और ज्ञान वो आगम से प्रकट होता है, और आगम जो है भगवान, उसका ओरिजिन जो स्रोत क्या है, उसकी बात चल रही थी यहाँ पर। तो यहाँ कहते हैं कि भेद विज्ञान से वासित यह अवबोध, यानी भेद विज्ञान करने वाला ये जो ज्ञान है, जो हम सम्यक ज्ञान कहते हैं, इन आगमों से उत्पन्न होता है, क्योंकि आगम से हमें ये सब बातें पता चली और उसका अभ्यास करके ये भेद विज्ञान प्रकट हो गया। जब यह सम्यक ज्ञान प्रकट हो तभी परवस्तुओं से उपेक्षा करके अपने आप में रमने लगने, मग्न होने का आचरण किया जाता है, जिसको चारित्र कहते हैं। यानी पहले सम्यक ज्ञान यानी भेद विज्ञान होता है, स्व कौन पर कौन इसकी पहचान होती है, स्व में लीन रहने से आत्मा का अनुभव तो वहां से चालू हो जाता है, आनंद की प्रतीति तो आनंद का अनुभव तो होने लगता है, उसी में स्थिर होने से ये आचरण, उसको का लीनता कहो एकाग्रता कहो, ये आचरण होने लगता है। इस कारण यह सम्यक चारित्र इस ज्ञान में नियत है, इसके लिए ज्ञान आवश्यक बात है, सम्यक ज्ञान में ही वो चारित्र नियत है। अब ज्ञान का महात्म्य बता रहे हैं, ज्ञान का बड़ा चमत्कार है। अज्ञानी जीव दुर्धर तप करके, कठिन में कठिन तप करके, करोड़ों जन्मों में भी जितने कर्म झड़ सकते हैं उतने कर्म यह ज्ञानी अपने ज्ञान के बल से, ज्ञान मग्नता के बल से क्षणमात्र में नष्ट कर सकता है। यह हमने कर्णान युग में भी बहुत बार इसको प्रूव भी किया है, क्योंकि जब ज्ञानी कहो या ऊपर के गुणस्थान वाले आत्मा में लीन रहते तो उनकी वो गुणश्रेणी रूप से निर्जरा चलती है, एक एक समय में इतने, दूसरे समय में उससे असंख्यात गुणा, तीसरे समय में उससे असंख्यात गुणा, ऐसे कर्म झड़ते रहते हैं। और वो ज्ञानी है, इसलिए कितने ही नए कर्म नहीं बनते। जिस गुणस्थान में है वहाँ जितनी बंधे विच्छित हो गई वो तो कर्म बनते नहीं है और पुराने जड़ रहे हैं। अज्ञानी क्या कर रहा है, मिथ्या दृष्टि है, वो पहले गुणस्थान है, कठिन में कठिन तप कर रहा है, तो उसका तो एक ही समय प्रबंध खिर रहा है और नया बंध तो हो ही रहा है। तो अभी बोलो कितने काल तक वो तप करेगा तो उसके कर्म झड़ेंगे, तो करोड़ों भवन तक तप करेगा इस तरह से, तो भी उसके जितने कर्म उतने करोड़ों भवों में, करोड़ों भव का अर्थ होता है असंख्यात इतने समय, भले वो करोड़ों भवों में कितने भी सागर की बात करो, तो इतने उसके एक क्षण में हो जाते हैं, एक छोटे अंतर्मुहूर्त में कहो एक समय में भी इतने, क्योंकि यहाँ तो असंख्यात समय प्रबद्धों की निर्जरा हो जाती है। सम्यक चारित्र सम्यक ज्ञान के बिना हो नहीं सकता। और ये अज्ञानी क्या करना चाहता है, वो मानता ही है कि जो बाह्य मैंने आचरण अंगीकार किया है, जिसको हम कहते द्रव्यलिंग अंगीकार किया है, उसी से मुझे मोक्ष हो जाएगा, और अज्ञानता पूर्वक उसको बिल्कुल जैसे बताया आगम में वैसा फॉलो करता है, परंतु वो आत्मा के अनुभव से रहित बात है, तो उससे कुछ फायदा नहीं होता। सभी आगम में समय सार में भी ये बात लिखी, सभी कोई भी आगम निकाल के देखो यही बात लिखते हैं। और इस सत आचरण में ही, सत आचरण यानी चारित्र, सत आचरण यह सामर्थ्य है कि भव भव के संचित कर्म नष्ट हो जाए, पुराने बंधे हुए अधिक मात्रा में खिर जाए, ये आत्मलीनता से ही पॉसिबल है, अन्यथा नहीं। कर्मों का विनाश उन्हें देख देख कर खोज खोज कर नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब अंतरंग में लीन है तो ये तो कर्मों का उसके तो लक्ष्य भी नहीं है, वो तो अपने आप खिर जाते हैं। वे परवस्तु है, उन पर मेरा कुछ अधिकार नहीं है। हम पूछते हैं आपको कर्म का उपशम करना है कि क्षय करना है, आप क्या चाहते हो बोलो? क्षय करना, ये कहते वो परवस्तु है, हमारा उस पर कोई अधिकार नहीं। हम तो ऐसे कर्म को काटना है, इसको करना है, ऐसे ये इसे सब पट्टी पढ़ाई जाती है। हाँ, कर्म का क्षय होगा वहां पर, वो अपने आप होगा, जीव क्या करेगा, अरे कर्म की तरफ देखेगा भी नहीं, जीव तो अपनी तरफ देख रहा है, जीव तो आत्मा में मग्न है, कर्म अपने आप निकल जा रहे हैं, ये कहना। कर्म का क्षय होगा जरूर, वो जीव कुछ नहीं करता उसमें, कर्म अपने कारण बनता है, अपने कारण छूट जाता है। देखो वे परवस्तु है, पहले ये नक्की करना है, अभिप्राय में नक्की करना है, सीख जाओगे, बस अभ्यास चालू रखो तो सब कुछ बातें ख्याल में आ जाएगी। प्रश्न भी हम ऐसे पूछते हैं कि अपनी जो कहीं कल्पनाएं हैं, हमारी कुछ भ्रांतियां, वो निकल जाए, इसीलिए प्रश्न पूछे जाते हैं। आप ऐसा लगेगा कि हमको ही क्यों पूछते हैं, इन सबको हमारे प्रश्न मालूम है और उसके उत्तर भी मालूम है उनको। हम पूछेंगे ना आपको कर्म का क्षय करना है कि उपशम करना है, वो बोल देंगे हम कुछ नहीं कर सकते, आपको ये मालूम नहीं था तो आज मालूम हो गया है ना। तो कहते वे परवस्तु है, उन पर मेरा कुछ अधिकार नहीं है। जीव ने राग द्वेष का भाव बंधन किया था, उसका निमित्त पाकर ये कारमान वर्गनाएं स्वयं कर्म रूप बन गई थी। हम कहेंगे जरूर भाषा में ऐसा है कि जीव ने कर्म बांधे और फिर जीव ने उसका क्षय कर दिया, कथन होगा, परंतु रियलिटी क्या है, यथार्थ वस्तु स्वरूप क्या है? तो कहते जीव ने अपने में ही किया, क्या किया, राग द्वेष रूप किया, और वो स्वयं कर्म उनके अपने स्वयं की योग्यता से वहां कारमान वर्गना थी, वो कर्म रूप होकर पुराने कर्मों के साथ वो जुड़ गए, यानी आत्मा के प्रदेशों में आकर वहां स्थित हो गए। न उस समय भी मैंने इन्हें कर्मरूप बनाया था और न इस समय भी मैं इन कर्मों का नाश कर सकता हूँ। आई ना बात, लिखा है ना वहां पर, पहले भी मैंने अपने भावों का बंधन, भावों का जाल गूंथा था, क्योंकि परवस्तु में कुछ कर ही नहीं सकता है, उसने अपने में वो तो इनके भाषा में कल्पनाएं कर दी थी, मान्यताएं विकल्प बनाए थे, कोई कोई भ्रांतियां खड़ी कर दी थी, राग द्वेष उत्पन्न किए थे, तो अपने भावों का बंधन, भावों का जाल गूंथा था, जैसे इस भाव का जाल गूंथने में हम स्वतंत्र थे और तब उसके इस भाव बंधनों का निमित्त पाकर ये कारमाण वर्गणाएं अपने ही स्वतंत्र रूप से कर्म रूप हो गई थी। अभी हमने भावों का जाल बनाना वो तो छोड़ दिया, तो कुछ कर्म तो आने वाले थे वो नहीं आएंगे, यानी आने की योग्यता थी वो, और पुराने थे वो निकल जाएंगे। अभी यह मैं आत्मा सम्यक ज्ञान के बल से स्वतंत्र होकर अपने आप में रमण करूं, आचरण करूं, तो ये कर्म स्वतंत्र रूप से इन शुद्ध भावों का निमित्त पाकर अथवा इन कर्मों के पोषक रागादि निमित्त थे उनका अभाव का निमित्त पाकर कर्म स्वयं यहाँ से हट जाते। जीव तो अपने में ही कुछ कर सकता है, पहले अज्ञान अवस्था में अज्ञान रूप से वो राग द्वेष मोह करता था, उसने अपने में ही किया, कर्म अपनी योग्यता से वहां कर बंद रूप होकर वहां रहते थे। अब जीव ने राग द्वेष मोह करना छोड़ दिया, मोह छूट गया उसका, मिथ्या तो चला गया, अपने आप में रमणता करने लगा, तो कर्म अपनी योग्यता से बंधे हुए अपनी योग्यता से निकल जाते। मानो यहाँ वे कहते हैं अब हमारा यहाँ क्या काम है, यहाँ मेरा पोषक तत्व ही नहीं रहा, क्योंकि कर्मों का पोषक क्या था, वो तो राग द्वेष मोह था, वह अभी नहीं रहा, तो कहते हमें अभी यहाँ का चारा पानी नहीं मिलेगा, चलो हम चले जाते अन्यत्र, मेरी कौन पूछ करे, ये राग द्वेषादिक भाव ही मेरे रक्षक थे, मेरी पूछ करते थे, मुझे पालते पोसते थे, अब मेरा पालनहार यहाँ नहीं है, वे स्वयं फिर जाते हैं। तो सम्यक आचरण के निमित्त से, आचरण कहने से यह शारीरिक क्रिया नहीं समझना, आत्मा में स्थिरता, एकाग्रता, चरना, समस्त कर्मों का क्षय होता है। जब सर्व कर्मों का क्षय हुआ तो जीव को विशिष्ट शुद्ध आनंद की प्राप्ति होती है, क्योंकि इसको उत्तम आनंद की प्राप्ति चाहिए थी, वो समस्त कर्मों के नष्ट हो जाने पर मिल जाती है। प्रभु भक्ति से आनंद प्राप्ति का विवरण, ये उल्टा उल्टा करके बताए ना, हमको उत्तम आनंद कब मिलेगा, समस्त कर्मों का क्षय होने पर। कर्मों का क्षय कैसे होगा, आत्मा में सम्यक चारित्र से, यानी चरने से, रमने से, वो कैसे होगा, सम्यक ज्ञान के बाद ही हो सकता है। सम्यक ज्ञान का कारण क्या है, तो आगम, आगम का मूल कारण कौन है, तो सर्वज्ञ भगवान, आप तो जिसको कहा था, ये तो हमने श्लोक में पढ़ा था। इस आनंद की प्राप्ति का परंपरया मूल निमित्त कारण कारण आप तो भगवान है, इसी कारण हम भगवान की श्रद्धा करते हैं, स्तुति करते हैं। भगवान के भी गीत क्यों गाए जाते हैं, क्योंकि उनके निमित्त से हमको ये सब आगम आज मिला है, इसलिए। इस मर्म को यथार्थ रूप में जिसने नहीं समझा है वह भगवान को सीधा अपना कर्ता धर्ता सुखदाता दुख हरता चाहिए दुखदाता मान लेता है। और फिर गीत भी गाते हैं ना, सुख करता दुख हरता भी क्या क्या विघ्न हरता है, और क्या भगवान की क्यों नमस्कार करते हैं हम, क्यों अभी तक नमस्कार करते आए, वो हमारा कुछ भला करे, कब याद आ जाती है उनकी, संकट आता है तो पहले में पहले याद आते हैं, यानी अंदर कहीं ना कहीं ऐसा छिपा है, क्योंकि अन्यमति के साथ रहते हैं, वो भी भगवान का नाम लेते हैं और वो समझते हैं भगवान हमारा सारा संकट दूर करेगा, हमारे भी भगवान थोड़े ही कमजोर है, वो भी अनंत वीर केदारी है, हम उनको भी बुला लेते हैं। मर्म वहाँ यह पड़ा है, जो प्रभु की भक्ति नहीं करता है, प्रभु के स्वभाव का दर्शन नहीं करता है, प्रभुता से जिसका मिलाप नहीं हो पाता है वह दुख ही पाता है, और जो प्रभु स्वरूप में झुकता है, प्रभु की भक्ति करता है, उसका ज्ञान सावधान रहता है और वह स्वयं वही आनंद भोगने लगता है। जैसा हम दर्पण को देखते हैं, दर्पण के सामने हम अपना मुख करें तो हमें दर्पण दिखता है और एकाएक थोड़ा हर्ष होता है, और अपना चेहरा देखकर कुछ मुस्कान भी आ जाती है और मुख न करे दर्पण की ओर तो उस प्रकार की बात हम पर नहीं आ पाती। यह हर्ष की रेखा क्या दर्पण ने उत्पन्न कर दी है? दर्पण की ओर देखकर क्यों प्रसन्न हो रहे हैं? वहां अपन मुख दिखता है इसलिए। तो भगवान को देखकर भी यही प्रसन्नता होनी चाहिए, वहां हमारा स्वरूप दिख रहा है। हम ही दर्पण के सन्मुख आए तो हमने अपने में हर्ष की रेखा उत्पन्न की। इसी प्रकार हम प्रभु स्वरूप के सम्मुख आए तो अपने स्वरूप का परिचय हुआ, स्वरूप का ग्रहण हुआ, ग्रहण यानी जानना हुआ, आनंद की प्राप्ति की, पुण्य का बंध हुआ, दुख से दूर हुए। ये सभी बातें अपने आप हो जाती है। प्रभु से विमुख हो तो विषय कषायों के गंदे परिणामों में बसना पड़ा और उन परिणामों में बसने से खोटा वातावरण हुआ, पाप कर्म बंधा, दुर्गतियों का सामना करना पड़ा। इसलिए प्रभु की उपासना का अनुरोध करते हैं, वो तो बता रहे हैं कि प्रभु की उपासना करनी चाहिए। प्रभु न किसी को सुख देता है न दुख देता है। कोई एक वस्तु एक पदार्थ दूसरे पदार्थ को कुछ नहीं कर सकता। प्रभु तो करने की बात ही दूर है, वो तो वितराग सर्वज्ञ है, वो नहीं करते हम तो कर सकते हैं ना एक दूसरे को मदद। वह तो शुद्ध ज्ञान स्वरूप निज आनंद रस में लीन आदर्श रूप है। आदर्श किसको कहते हैं मालूम है? दर्पण को भी आदर्श कहते हैं। और आदर्श यानी हमारा वो उपकार ही नहीं है, आइडॉल आइडॉल। हम कहते हैं हमारे लिए आदर्श कौन है, ये किसको हम फॉलो करना चाहते हैं, उसको भी आदर्श कहते हैं ना। महात्मा गांधी, अच्छा हमारे वो आदर्श है। वैसे आदर्श का दूसरा एक अर्थ होता है आयना, दर्पण। तो कहते हैं ये प्रभु कहते हैं शुद्ध ज्ञान स्वरूप निज आनंद रस में लीन आदर्श रूप है। जो उनको आदर्श रूप मानकर चलते हैं, आदर्श रूप माना है ना, हमें उनके जैसा बनना है ऐसा हमने माना, वे स्वयं वही सुख पाते हैं। और जो उनके आदर्श से विमुख रहते हैं वे दुख पाते हैं। जो हमारे आनंद मिलने में सुख की प्राप्ति में निमित्त हुए आप्त सर्वज्ञ वितराग हितोपदेशक भगवान, इस कारण जो पुरुष श्री चाहते, श्री यानी लक्ष्मी चाहते हैं, कल्याण चाहते हैं, ज्ञान चाहते हैं, इन सबका एक ही अर्थ है, तो वे पुरुष अपनी भलाई के लिए ऐसे आप्त देव का आश्रय करें, अर्थात प्रभु की ओर आए। ये लक्ष्मी यानी लौकिक संपत्ति की बात नहीं है, धन संपत्ति की बात नहीं है, ज्ञान लक्ष्मी की बात। हम आपकी दिनचर्या में दिन होने के बाद यानी सूरज उगने के बाद पहले नहा धोकर मंदिर आना, प्रभु मूर्ति के सम्मुख खड़े होकर प्रभु का ध्यान करना, यह चलता आया है। क्योंकि हमारे सुखों का मूल निमित्त कारण यही प्रभु है। इनकी मूर्ति को देखकर उस प्रभु की याद आती है, इस कारण यह मूर्ति भी व्यवहार में पूज्य मानी गई है। यो सुख चाहते हो तो हर प्रकार से इस आप्त वितराग सर्वज्ञ देव की उपासना करो। क्यों करना वो बात बता दी, वो कुछ देने वाले नहीं है। अब 10 नंबर का श्लोक पढ़ेंगे हम। श्रद्धानं द्विधं त्रिधा दशविधं मौढ्यैर्यज्ञपूढं सदा संवेगादिवर्धितं भवहरं त्र्यज्ञानशुद्धिप्रदं निश्चिन्वन्नवसप्ततत्त्वमचल प्रासादमारोहतां सोपानं प्रथमं विनेय विदुषा माध्येयमाराधना। वो क्या शब्द है? दशविधम मौढ़्या पूर्ण मौध्याज है कि मौध्ययाद्य मौध्ययादि अपोढ़म सदा सदानिधं सदाशुद्धं मौध्ययाद्य पोढ़म मौध्ययाद्य पोढ़म सदा मौध्यया ऐसा शब्द है क्या मौध्या शब्द है दिखाओ मुझे कोई बात नहीं मौध्य मौध्याद्य पोढ़म ये मौध्यया किया है ना मौध्या चाहिए मौध्याद्य मुझे लगा ही मैंने उन्हें ढ को य किया और फिर या अलग से लिखा है या चाहिए मौध्या य नहीं वो य को या करना क्योंकि वो जोड़ाक्षर रखना मौध्या द्य पोढ़म या निकाल कर य को या करना देखो मैं बताती हूँ आपको मौध्या करना ढ को य करना और उसके ऊपर आगे का या निकाल देना ढ लिखा है ऑलरेडी य लिखा है इसको या करना मौध्याद्य पोढ़म उसके बाद का याद निकाल देना वो या था वो निकाल देना इसमें या ऐसा करना समझ में आई ना बात ये य था ही यहाँ पर ऐसा आधा उसको एक मात्रा देना और आगे वाला या निकाल देना अपोढ़ ब्रह्मा रखती है ना हाँ उसके पुस्तकें दोनों यही रहती है ना पता नहीं मुझे उनके लिए क्या हाँ हाँ लाल कलर की होगी हाँ है पहले ख्याल नहीं आया हाँ कोई बात नहीं पेज नंबर 56 निकालना 56 नंबर देखो हमने अभी 10 नंबर का श्लोक पढ़ा यानी वो ऐसा पढ़ना चाहिए था श्रद्धानं त्रिविधं त्रिधा दशविधं मौध्याद्य पोढ़म सदा यानी अभी वो राग में भी बराबर आता है मौध्याद्य पोढ़म अभी पढ़ेंगे उसका अर्थ प्रवचन अभीष्ट कार्य के लिए श्रद्धा की अनिवार्यता इसके द्वितीय पहले छंद में यह बताया गया था कि सुख धर्म से होता है पाप से दुख होता है सब धर्म से सुख मिलता है ये बात पहले बताई चुकी थी इसके बाद यह भी प्रतिपादन कर दिया गया उस सुख की प्राप्ति में मूल निमित्त कारण सर्वज्ञ वितराग देव है ये 9 नंबर में बता दिया अब उस धर्म की व्याख्या में सर्वप्रथम जो परिणति आती है उस परिणति के संबंध में इस छंद में जो प्रतिपादन किया है वह है धर्म का पहला सोपान सम्यक दर्शन धर्म की पहली सीढ़ी मोक्ष मार्ग की मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी ये कहते हैं ना उसको यानी सम्यक दर्शन श्रद्धा की बात है ये बात जिसके संबंध में आगे लिखा है छड़ाला में भी कहा है मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी या बिना ज्ञान चरित्रा सम्यकतान लहे सो दर्शन धारो भव्य पवित्रा यानी इनके बिना वो चरित्र भी सम्यक नाम नहीं पाता है ज्ञान भी सम्यक नाम नहीं पाता है यह सम्यक दर्शन मोक्ष मंदिर की प्रथम सीढ़ी है अथवा धर्म पालन का मूल स्थान है यह सम्यक दर्शन इस निज आत्म स्वरूप का जब तक दर्शन नहीं होता है तब तक कम हम करेंगे क्या मोक्ष प्राप्ति के लिए शाश्वत सत्य आनंद की प्राप्ति के लिए जो कुछ हमें करना है उसका नाम है सम्यक चारित्र यानी अंतरंग में स्थिरता पर वो पहले वो उसको पहचाने बिना किसमें स्थिरता करेंगे?
जो करना है उसकी श्रद्धा तो पहले चाहिए, श्रद्धा नहीं हो तो आगे कुछ किया नहीं जा सकता। लौकिक अभीष्ट सिद्धि के लिए भी श्रद्धा की अनिवार्यता, लौकिक भी जो हम कार्य संपन्न करना चाहते हैं वहां पर भी श्रद्धा की आवश्यकता होती है। कह रहे हैं जितने लौकिक काम भी किए जाते हैं वे सब श्रद्धा पूर्वक किए जाते हैं। जैसे महिलाओं का रोटी बनाने का ही काम ले लो, उनमें कितनी दृढ़ श्रद्धा है कि रोटी आटे से ही बनती है। कभी ऐसा वे नहीं सोचती कहीं ऐसा न हो आज आटे से रोटी न बने। जिस विधि से रोटी बनती है उसका भी कितना श्रद्धान है। श्रद्धान के बिना तो कोई कुछ भी कार्य नहीं करता है। व्यापार में व्यापार विषय श्रद्धान होता है। जो श्रद्धान नहीं किए हुए है, पेज नंबर 57 पहली लाइन, उसकी चेष्टा तो पागलों की चेष्टा कहा करते हैं। यानी बिना श्रद्धान के बिना सोच समझ के कुछ भी कर लिया तो हम जो कोई कार्य करते हैं तो उसमें तो हमें बिल्कुल पता है, विश्वास है कि इसी विधि से ये कार्य संपन्न होगा। उस श्रद्धान के संबंध में कहा जा रहा है, आत्मा को चाहिए आत्मा की मुक्ति, सर्व संकटों से रहित आत्मा पद का अनुभवन। तो जिससे संबंधित कार्य चाहिए उसका श्रद्धान होना प्रथम आवश्यक है। यानी हमें आत्मा का अनुभवन चाहिए, आत्मा में सुख चाहिए, तो कहते वो आत्मा की श्रद्धा सबसे पहले होगी तो आगे की बात करेंगे। श्रद्धान ही नहीं होगा तो आगे का कुछ नहीं होगा। अब यहाँ बताए ना, श्रद्धानम द्विविधम त्रिधा और दशविधम, दो प्रकार के बताए, तीन प्रकार के बताए और दस प्रकार के बताए। अब यहाँ बताएंगे श्रद्धान के दो प्रकार, श्रद्धान कहो या आत्मश्रद्धान कहो। आत्मश्रद्धान दो प्रकार से होता है, एक निसर्गज और एक अधिगमज। वो आता है ना चतुर्थ श्रद्धानं सम्यक दर्शनं, उसमें भी ये दो बातें बताइए। यह श्रद्धान के स्वरूप के भेद से भेद नहीं है, क्या कहना है? यानी सम्यक दर्शन दो प्रकार के हैं, उसके सम्यक दर्शन के टाइप में कोई डिफरेंस नहीं है। सम्यक दर्शन तो सम्यक दर्शन ही है, वो कैसे प्राप्त किया उसके लिए ये भेद है।
एक मिनट।
हाँ
देखो, बहुत जगह ऐसी लोगों की मान्यताएं चल रही है। एक लिखा ना निसर्गज और एक अधिगमज, तो निसर्गज यानी निसर्गता सम्यक दर्शन होता है, और अधिगमज यानी किसी का बोध मिला, चेतना मिली, तब उसको सम्यक दर्शन होता है। ऐसा इसका अर्थ है नहीं। निसर्गज होवे या अधिगमज होवे, वहाँ तो देशना तो आवश्यक है ही है, इस भाव में मिले या पूर्व भाव में मिले। यानी लोगों की ऐसी मान्यता चल रही है। अभी हम गए थे ना बांसवाड़ा में, वहाँ ये बात निकली थी। यानी लोग ऐसा ही मानते हैं कि भाई निसर्ग जाने उसको देशना की आवश्यकता नहीं है, ऐसी नहीं है। उसको देशना होती है, उस भाव में न मिली हो, पूर्व भाव में मिली है तो उसको निसर्गज कहेंगे, लेकिन उसको देशना पूर्व में मिली थी वो याद आई। जैसे गौतम गंधर्व जब वो इंद्रभूति थे आए, सम्यक दर्शन हुआ, तो सम्यक दर्शन हुआ तो जिनेन्द्र भगवान की वाणी से हुआ कि नहीं, बोलो अरविंद भाई?
भगवान की वाणी से उनको सम्यक दर्शन हुआ कि नहीं?
भगवान की वाणी खिरी नहीं थी। हाँ यही बात है। और उनको
सम्यक निमित्त से, मिथ्या दृष्टि के निमित्त से वाणी नहीं खिरेगी। गणधर जैसे कोई चार ध्यान का धारी होगा तभी वाणी खिरेगी। तो गौतम गंधर्व को सम्यक दर्शन हुआ तो उसमें निमित्त कौन था, किसकी वाणी निमित्त थी?
ने मुझे यही बताना था कि लोगों में ऐसी गलत फहमियां चल रही है, हम उसके शिकार न बने, बस इतना ही।
जैसे सर्वथा निसर्ग जो होता ही नहीं।
एक मिनट,
इस भाव में नहीं मिला वो। हाँ
अभी बोलना जो बोलने
का, ये पंचलब्धि पुस्तक में भी लिखा है, अभी यहाँ पे बात आएगी वो बताएंगे। देखो श्रद्धान के दो प्रकार बता रहे हैं, श्रद्धान कहो या आत्मश्रद्धान कहो। आत्मश्रद्धान दो प्रकार से होता है, यानी विधि की बात है, ये विधि में डिफरेंस है। एक निसर्गज और एक अधिगमज। अधिगम यानी ज्ञान, यानी किसी से उसको बोध हुआ। यह श्रद्धान के स्वरूप के भेद से भेद नहीं है, किंतु साधना के भेद से भेद है। किसी जीव को दूसरे का उपदेश मिले बिना भी सम्यक स्वभावतः उत्पन्न हो जाता है, और किसी जीव को उपदेश आदि का साधन मिलने पर सम्यक दर्शन होता है। जो स्वयं होता है उसे निसर्गज कहते हैं, और जो आगे लिखा है उन्होंने, जो पर के उपदेश से होता है उसे अधिगमज कहते हैं। सम्यक की उत्पत्ति में जो पांच लब्धियां बताई है उनमें देशना लब्धि भी है। आशा बेन मालूम है पांच लब्धियों के नाम? बोलो सुशीला बेरो। शोभसम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग्य लब्धि और करण लब्धि, ये पांच लब्धि के नाम। उनमें देशना लब्धि भी है। निसर्ग जो सम्यक्त्व का अर्थ यह है, इस भाव में उपदेश नहीं मिला, लिखा है ना स्पष्ट शब्द से, फिर भी सम्यक्त्व हो गया, किंतु उसने पहले कभी उपदेश पाया था किसी भाव में और उसका संस्कार बना हुआ है, यानी वो ज्ञान की हर पर्याय में वो संस्कार रूप उसकी धारा चल रही है। जो अब इस भाव में उपदेश का साधन न मिलने पर भी सम्यक्त्व उत्पन्न किया है। दूसरा भेद है अधिगमज। परो उपदेश का निमित्त पाकर सम्यक्त्व हो उसे अधिगमज कहते हैं। यह केवल उत्पत्ति के भेद से भेद किया गया है। वैसे भी वो देशना लब्धि में भी सुनने की महत्व मुख्यता होती है, सुनकर मैंने ऐसा भी पहले किसी ने सुना है या अच्छा उसका भावभाषण हुआ है पहले सुनकर, तो पढ़कर भी होगा उसका। जैसे हम कांजी स्वामी के बारे में बताते, वो तो स्थानकवासी में जन्म हुआ था, वहाँ की दीक्षा भी धारण की, तो समय सार जब हाथ आया तो हम ऐसा निगम्बर होते हुए भी समाचार पढ़ के कहाँ उसका अर्थ मालूम होता था। तो उनके तो यथार्थ तो वो सब ख्याल में आ गया, पहले ही देश पहले की देशना इसको पढ़कर भी वो ख्याल में आ गया। जिसको देशना मिली है उसको ऐसा भी हो सकता है भगवान का दर्शन करके भी उसको वो कुछ स्मृति याद आई, जैसे अभी इंद्रभूति के लिए वो मानस समय में तो अरिहंत की प्रतिमा देखी ना उन्होंने, मान गल गए ना कि समय दर्शन हो गया। प्रतिमा देखते हम तो रोज देखते हैं, तो उनके क्या हुआ उस समय वो देशना याद आ गई, अंतर्मुख परिणाम। वो सब थोड़े हर समय सब लिखेंगे, वो तो बाह्य निमित्त को करके बताएंगे कि इसके कारण हुआ। अब सम्यक्त्व के तीन प्रकारों की भूमिका वो सम्यक्त्व बाधक स्रोत, यहाँ देखो श्रद्धानम द्विविधम ये बता दिए, अब त्रिविधम तीन प्रकार के सम्यक तो बताएंगे, जो औषमिक शौषमिक वो शायद बताएंगे उसमें, यानी उसमें जो कर्मों की जो विशेषताएं वो उसमें कथन करेंगे। निमित्त के भेद से सम्यक तो के तीन भेद है, निमित्त ने कर्मों की क्या अवस्था है उसके आधार से औषमिक शौषमिक और क्षायिक समय दर्शन। समय दर्शन के बाधक निमित्त है सात प्रकृतियां, अनंतानुबंधी क्रोध मान माया और लोभ, क्रोध के बाद एक कोमा लगा लो, मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व को आधा और सम्यक प्रकृति। अनंतानुबंधी कषाय उसे कहते हैं जो अनंत अर्थात मिथ्यात्व का बंधन बनाए, यानी उसके साथ साथ काम करता है। मिथ्यात्व का दूसरा नाम है अनंत, मिथ्यात्व को अनंत भी कहते हैं, अनंत के साथ उसका अनुबंध है, वो तो डबल एजेंट है, चारित्र मोहिनी है और ये दर्शन मोहिनी के साथ साथ काम करता है। जिस कषाय से मिथ्यात्व का संबंध बढ़े उसे अनंतानुबंधी कहते हैं। धर्म का प्रसंग लेकर क्रोध मान माया लोभ का आना, ये अनंतानुबंधी कषाय के बाह्य लक्षण है। क्या कहते हैं? धर्म के प्रसंग में क्रोध मान माया लोभ उत्पन्न होते हैं तो कहते हैं अभी उसका अपना कल्याण करना भी दूर है। धर्म कार्य करते हुए पूजन स्वाध्याय अथवा धर्मात्माओं की व्यवस्था धर्म चर्चा करते हुए किसी कारण से क्रोध उमड़ आए, वह ऐसे क्रोध की प्रकृति बनी रहे तो यह अनंतानुबंधी क्रोध है, क्योंकि उस जीव ने धर्म का भी आदर नहीं किया, धर्म को भी कुछ नहीं समझा। जैसे पूजा करने में ही कोई कहे तुम यहाँ मत पूजा करो, कल हम यहाँ खड़े थे, यहाँ से हट जाओ, ऐसी कुछ भी बात आए तो यह अनंतानुबंधी क्रोध के लक्षण है। यह एक लक्षण बताया, ऐसे बहुत से लक्षण होते हैं। इस जीव में धर्म का स्वरूप समाया हुआ न था, उसने अपने विकल्प में पर्याय बुद्धि की थी, ऐसी वासना होने के कारण उसे क्रोध उमड़ आया है। अभी इसको बहुत शॉर्ट में ये बता दिया है, कुछ ऐसा फॉर एग्जांपल तरीके से हमने वो भावदीपिका वगैरह में बहुत विस्तार से देखा था। सम्यक्त्व बाधक मान मायावर लोग, धार्मिक प्रसंग में घमंड आ जाना अनंतानुबंधी मान है। जैसे साधर्मी जनों के बीच बैठे हो, एक मान के आसन से उस धर्म के प्रसंग में अपने को महान जताना, यह अनंतानुबंधी मान है। यह संसार की वृद्धि करने वाली कषाय है। धर्म के मामले में मायाचार बना रहना, किसी संस्था की सेवा में, मंदिर की व्यवस्था में या धर्मात्माओं की सेवा में, ऐसे धर्म प्रसंगों में मायाचार रहना, छल कपट कर रहना, यह अनंतानुबंधी माया है। कोई बड़ा सेवा भाव दिखाए और अंतरंग में कोई स्वार्थ वासना हो, या अन्य कोई धर्म प्रसंग में छल कपट हो, यह अनंतानुबंधी माया है। जैसे कथानक आया है, किसी चोर ने किसी सेठ के चैत्यालय से मणिरचित छत्र चुराने के लिए त्यागी का भेष रखकर पहले विश्वास जमा लिया और फिर मौका पाकर वह चुरा कर चला गया। ऐसी अनेक घटनाएं गृहस्थ जनों में भी समाई हो सकती है। यह सब अनंतानुबंधी माया है। और धार्मिक कार्यों की आवश्यकता समक्ष होते हुए भी, यानी सामने होते हुए भी, अपनी सामर्थ्य होकर भी उसमें उदारता न लाना, तृष्णा भाव रखना, यह अनंतानुबंधी लोभ है। सम्यक्त्व के तीन प्रकार, शुभ भाव और स्वाध्याय आदि देव पूजा, यानी वो धर्म के, यानी वो परंपरा, जो कारण अभी उन्होंने बताया ना, परंपरा से वो वहां तक ले गए थे, पूजा करना, मूर्ति की करना, ये स्वाध्याय करना, ये आगे बढ़कर ये सम्यक्त्व के, यानी धर्म के साधनभूत कारण है, उसको धार्मिक कार्य भी कह देते। वो तो है ही है। हाँ, यानी आत्मा को ही नहीं मानता है। अब यहाँ वही बात बताई, आत्मा की बात सुनते हुए भी क्रोध उमड़ आ रहा है उसको, यानी उन्होंने लौकिक समझे साधारण आदमी इस तरह से, वहाँ कोई भी शास्त्रीय भाषा भी नहीं ली है। सम्यक्त्व के तीन प्रकार,
आप क्या कह रहे हैं समझो,
उन्होंने बताया गुरुदेव ने तो ऐसा बताया, आत्मा के प्रति क्रोध आना या आत्मा को ही नहीं मानना, वही क्रोध मान माया लोग उसको। हाँ, तो वो तो समझाने के लिए एकदम, अभी वो सामान्य लोग क्या, नहीं ऐसे ऐसे प्रसंग में भी क्रोध हो जाना, ऐसे लौकिक कार्यों के लिए क्रोध आ जाना वो तो बात अलग है, वो तो हम कहेंगे एक बार क्षम्य है। परंतु जब हम अभी शास्त्र स्वाध्याय कर रहे हैं, सब साधर्मी है, हम आत्मा की बात सुनना चाहते हैं, और यहाँ कोई अपने को बड़ा मानकर बैठता है कि दूसरे को हीन लगता है या कोई उसके लिए मायाचारी करता है, तो ये कैसी कषाय है, इसलिए उसको अनंतानुबंधी करना। देखो सम्यक्तों के तीन प्रकार, यो चार कषाय और मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, ये तीन दर्शन मोनि है। ये सात प्रकृतियां सम्यक्तों में बाधा देने वाली है। इन सात प्रकृतियों का उपशम हो अर्थात ये दब जाए, उदय अथवा उदीर्णा में न आए, ऐसी स्थिति का निमित्त पाकर औपशमिक सम्यक्त होता है। अनादि मिथ्या दृष्टि जीव के अथवा जिसने सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति की उद्वेलना की हो, ये सुबह बात आई थी ना उद्वेलना की, आप लोग नहीं थे, उद्वेलना है ना, वो एक बार सम्यक्त से मिथ्यात्व में आता है तो ये दो प्रकृतियां तो बनी है, उसका उल्टा संक्रमण होता रहता है, मिथ्यात्व में टर्न होती रहती है। ऐसे जीव के पांच प्रकृतियों के उपशम से उपशम सम्यक्त होता है। अनादि मिथ्या दृष्टि के पास एक मिथ्यात्व कर्म ही है, बंधने वाली मिथ्यात्व प्रकृति होती है। तो मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी के चार पांच का उपशम करके वो उपशमिक सम्यक दृष्टि होता है। इन्हीं सात प्रकृतियों में से छह प्रकृतियां तो है सर्वघाती, जिन छह के उदय में सम्यक्त रंच भी नहीं रह सकता, और एक प्रकृति सम्यक प्रकृति नाम की देशघाती है, कल इसकी चर्चा विशेष करेंगे, अभी इतना पढ़ लेते हैं। वह सम्यक्त में चलमली नगार दोष उत्पन्न करती है। इन सात में से छह प्रकृतियों का उदयाभावी क्षय व उपशम हो और सम्यक प्रकृति का उदय हो, ऐसी स्थिति में एक क्षयोपशमिक सम्यक्त होता है। और इन्हीं सात प्रकृतियों का जब मूलतः क्षय हो जाए तो क्षायिक सम्यक्त होता है। ये तीन भेद निमित्त नैमित्तिक कारण के भेद से भेद किए गए हैं। कल वो तीन प्रकार है ना, वहां से फिर पढ़ेंगे और उसकी विशेषता वो सब हम देखेंगे क्या है। जावाणी के ज्ञान से सूझे लो पालो, सोवाणी मस्तकनम सदा देत होम।